भूलू तुम सब कह दो, यानी सब मुसलमानों से कहा गया, सब ईमान वालों से कहा गया तुम सब कह दो। हनीफ बनने का तरीका क्या है? आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाना क्या होता है? ये कहना तो बड़ा आसान है, दो ही लफ्ज है, आमन्ना बिल्लाह, कौन सा मुश्किल है? आप तोते को भी रटा दें, वो भी कह देगा आमन्ना बिल्लाह। हम ईमान लाए, सब मिलके कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर। ईमान लाना क्या होता है? ये पता भी है ईमान क्या होता है? जब वो नहीं थे, कौन से सहाबी थे, जब वुजू करने लगते थे तो कांप जाते थे, कहते थे कि मैं ये सोचता हूं कि किसके आगे खड़े होने जा रहा हूं। पता भी है अल्लाह कौन है जिसके ऊपर ईमान लाए? और जब ईमान आता है उसके बाद मैंने मान लिया अल्लाह को, और अब यानी ईमान का मतलब क्या, मान लेना, मान लिया अल्लाह को अपना रब, उसके बाद उसके बाद क्या, मतलब चलें आप इस तरह से समझें, इसको अभी छोड़े एक तरफ रखें, आप इस तरह समझें, जैसे आप कहती हैं मैंने इसको अपना शौहर मान लिया, अब निकाह हुआ, आपने साइन किए, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती? या आप जाके कोई और बैठ जाती हैं, ना कोई और का हक अदा किया, ना कोई अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन कह रही हाँ ये मेरा शौहर है, मैंने मान लिया इसको शौहर, ऐसे कुछ चलता है? इस तरह का कोई चीज कभी सुनी है ऐसी कोई चीज? ऐसे नहीं होता ना। जब आप कोई चीज किसी को मान लेते हैं कुछ, तो उसके कुछ तकाजे होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? आपने अल्लाह को क्या मानना है? रब, इलाह, इलाह से तो बड़े कोई चीज ही नहीं होती, इलाह से ऊपर कोई रिश्ता है ही नहीं, यानी टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, जिसका जिसकी मेरी जिंदगी में नंबर वन प्रायोरिटी है, उसको इलाह कहते हैं। हमें तो इलाह का भी नहीं पता इलाह है क्या, पता नहीं क्या मान लिया हमने अल्लाह को, यही नहीं पता हमें। ये पता है किसी को अपना बाप मान लिया, माँ मान लिया, शौहर मान लिया, हाँ मैं मानती हूँ मेरी औलाद है, इन सब इन रिश्तों का पता है। इलाह मान लिया, ये पता ही नहीं इलाह है क्या? पता भी है क्या क्या मानना है अल्लाह को? पता ही नहीं, इसीलिए तो फिर आगे कुछ भी नहीं करना ना, मान लिया बस मान लिया, क्योंकि मान इसलिए लिया कि माँ बाप कहते थे कि इसको इलाह मानो, तो हमने भी मान लिया। कितनी बड़ी बात हम कहते हैं जब हम अल्लाह को अपना इलाह मानते हैं, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, बहुत बड़ी बात है। इंसान कांप जाए इस बात से भी कि मैंने अल्लाह को अपना इलाह मान लिया, अब मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब मान लिया तो कोई बात नहीं, मान लिया, अगर इतना ही कहना, कहने से ये बस हो जाता होता और कुछ करने की जरूरत ही ना होती, तो मुशरिकी ने मक्का भी कह देते हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर उसके बाद करना तो कुछ भी नहीं था ना, हमारे तरह के अगर ईमान होते तो। लेकिन उनको भी पता था ना, इतनी उनको भी सेंस थी कि ईमान लाना क्या चीज होती है। तो आमन्ना बिल्लाह कहना क्या है? ये नहीं कि अल्लाह को मान लिया इलाह और उसके बाद अल्लाह की मांगी नहीं, ये नहीं है ईमान। सब सब कुछ मान लिया अपना, जैसे हम कहते हैं ना, तू मेरा सब कुछ है, इलाह समझ ले इस तरह, ये तो इंसानों को कहने के काबिल बात नहीं है जो लोग कहते हैं तू मेरा सब कुछ है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह तू मेरा सब कुछ है। कभी अल्लाह के लिए भी मोहब्बत से ऐसे कहे, अल्लाह तू मेरा सब कुछ है, वो है इलाह। तो इसको समझे इलाह क्या है, इसको समझे कि खुदा बनाना किसी को क्या है। चलो ऐसे नहीं समझ आता, इन्हीं से सीख लें जो लोग फजूल किस्म की शायरी करते हैं, और तू मेरा खुदा है, और इस तरह तो जानते हैं कितनी बड़ी बात कह रहे होते हैं। जब अल्लाह के लिए कहते हैं तू मेरा खुदा है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। तो आमन्ना बिल्ला, तुम सब करो, डिक्लेयर करो, करो ये कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, और किस पर? वमा उन्जिला इलैना, और जो हम पर नाजिल किया गया, हमारी तरफ यानी नाजिल किया गया, वो क्या है? कुरान, हम उस पर ईमान लेकर आए, यानी सबसे पहले हम अपनी किताब पर ईमान लेकर आते हैं। वमा उन्जिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूबा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सूफ उतरे, और जो इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पे, और जो असबात पे, जो उनकी औलाद के ऊपर, जो उनकी औलाद के अंदर सारे ही पैगंबर आ गए, जो भी इनके बाद आए थे, आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो जितने पैगंबर आए हैं ना, वो सब सिर्फ इनकी औलाद में ही हैं। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनको ऑनर दिया, कोई पैगंबर इनकी औलाद से बाहर आया ही नहीं। सारे के सारे, यानी जो जो इनसे पहले गुजर चुके, जाहिर है बहुत उनकी बात नहीं हो रही, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं वो सिर्फ इनकी औलाद से आए हैं, और उनमें सारे के सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। ये उम्मीद है कि ये बात याद रहेगी। तो अब जो ये पैगंबर आए इस्माइल अलैहिस्सलाम पे भी नबी थे, नबुवत मिली थी, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ उतरा होगा, कोई वही जो भी आई उनके इसहाक अलैहिस्सलाम पे भी, याकूब अलैहिस्सलाम पे भी, और उनकी औलाद के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, और भी जितने पैगंबर आए हैं उनकी औलाद के अंदर। और वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी असबात में आते हैं, लेकिन उनका अलग से जिक्र किया गया क्योंकि इनके नाम पे ही इतने बड़े बड़े ग्रोह बने। और खास तौर पे ये डिक्लेयर की कि इन, जैसे मैं कहूँ कि पूरी क्लास जो है वो पास हो गई, और शाजिया और आमना ये भी पास हुई है, तो यानी उनको खास तौर पे अहमियत दी गई। तो यहाँ पे इन दो पैगंबरों का अलग से नाम लिया गया ताकि वो जो बात कहते हैं उनको भी पता चले कि मुसलमान जो है सब पर ईमान लाता है। तौरात दी गई मूसा अलैहिस्सलाम को, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, जो दिए गए मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, और ये बड़ी किताबें हैं दो जो इनकी बेस है, तौरात और इंजील, हम इसके ऊपर भी ईमान लाते हैं। और अब ये कोई नहीं उठ के कहे कि मैं जाके बुक स्टोर से बाइबल ले आती हूँ और वो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमने तो आज पढ़ लिया ना कि हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं। ये बाइबल वो नहीं है, और ये लोग खुद मानते हैं, इनके तो खुद इतने वर्जन हैं, अब इनसे पूछने कौन सी वाली बाइबल पढ़नी, कि इतनी तरह के वर्जन हैं, ओल्ड टेस्टमेंट तौरात है, न्यू टेस्टमेंट इंजील है, इनके कितने वर्जन हैं इनके पास, तो इसी से नहीं पता चलता कि इनके तो खुद सही नहीं है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में कहीं मौजूद हो, और बाहर ऑथर भी लिखा होता है। अब बंदा पूछे कि भई ये अल्लाह की तरफ से उतरी है कि या ये ऑथर ने लिखी है, तो इसी से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो हम उस पे ईमान लाए हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, इस पे नहीं जो ये इन्होंने लिख के अब रखी हुई है। हालांकि काफी चीजें इसके अंदर भी वो हैं जो ओरिजिनल थी, पूरी तरह चेंज नहीं कर सके, लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें हैं इसमें जो कि वाकई ओरिजिनल थी, वो हमें ये कुरान वेरीफाई करेगा। इसीलिए इस कुरान पाक में ये तस्दीक करता है तौरात और इंजील की, यानी जो जो चीजें उसके अंदर सही हैं ये उनको वेरीफाई कर देगा कि ये सही है और ये नहीं सही जो इन्होंने खुद बनाई है। वह माऊती नबीयून मिन रब्बिहिम, और जितने भी जो भी दिए गए नबी, जो भी चीजें उनके ऊपर उतरी हैं, हम सब के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। देखिए मुसलमान, ये होती है टॉलरेंस, इनसे पूछें कि इस किस्म की टॉलरेंस इनके पास है। टॉलरेंस वो नहीं है कि सारे दीन ठीक हैं जी, किसी को गलत ना कहो, आप क्यों कहते हैं आप ये तो मुसलमान जो है इनटॉलरेंट है, नहीं 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 भाई सभी ठीक है, ये कोई टॉलरेंस है? ये है टॉलरेंस कि हम सबको मानते हैं, हम सबको कहते हैं कि जो हक लेकर अल्लाह की तरफ से आए हम उनके ऊपर ईमान रखते हैं। और हाँ, मगर वो जो बाद में जिन्होंने अपनी चेंजेस की, हम वो नहीं मानेंगे, जो अल्लाह की तरफ से उतरा उस सबको मानते। और हम इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम ईसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, जाहिर है उनकी किताबों को मान रहे हैं, तो उन पैगंबरों को रसूल मानते हैं तो उनकी किताबों को मानेंगे ना, ये तो नहीं है तौरात को मान रहे हैं लेकिन हम मूसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, हम ईसा अलैहि सलाम नहीं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम तो इन पैगंबरों में से किसी में फर्क नहीं करते, यानी हम ये नहीं कहते कि हम याकूब अलैहि सलाम को मानेंगे लेकिन हम मूसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, हम ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम को नहीं मानते, ऐसे नहीं हम करते, हम किसी में फर्क नहीं करते। फर्क करने का मतलब ये कि एक को नहीं मानना दूसरे को मानना, जबकि इनसे आप पूछ लें, जो यहूदी हैं वो ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, जो ईसाई हैं वो मूसा अलैहि सलाम को नहीं समझते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इनमें से कोई भी नहीं मानता, तो टॉलरेंट फिर इनमें कौन हुआ? मुसलमान जो सबको मानते हैं और सबकी उस तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम करते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि वो अगर हमारे पैगंबर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम भी खड़े हो जाएं और ईसा अलैहिस्सलाम को डिसरिस्पेक्ट करने लगे, हम ये नहीं कर सकते। वो अगर हमारी किताब या हमारे पैगंबर या इसके बारे में, अल्लाह के बारे में कोई बात करते हैं, तो हम भी उनको जवाब में उनके पैगंबर और उनकी किताबों के ऊपर कोई बात करने लगे। ये नहीं हम कर सकते। वनहनु लहू मुस्लिमून, और तुम कह दो कि हम हैं उसके लिए फरमाबरदार, यानी अल्लाह ही के फरमाबरदार हम हैं। लहू, लहू मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब शुरू में आ जाता है तो क्या होता है, सिर्फ उसके हैं हम फरमाबरदार, उसी के हैं हम फरमाबरदार, समझ आई। वरना मुस्लिमूना लहू अगर हो तो हम फरमाबरदार हैं उसके, यानी उसके भी हो सकते हैं औरों के भी हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब हमने कह दिया लहू मुस्लिमून, सिर्फ उसके हैं फरमाबरदार, यानी बाकियों को अगर तुम कहोगे कि अल्लाह को छोड़ के उसकी फरमाबरदारी कर दो, या अल्लाह की भी करो और फलां की भी करो, तो ये नहीं होगा। अल्लाह की फरमाबरदारी के तहत अंडर सबकी फरमाबरदारी होगी, इक्वल नहीं हो सकती। तो जितने लोगों के हम कहने मानते हैं, चाहे वो वालदैन है, चाहे शौहर है, चाहे कोई, चाहे हमारे बच्चे ही कुछ कह रहे हैं, हम उनकी भी बात मानेंगे, लेकिन वो ही होगी जो अल्लाह के हुक्म के अंडर होगी, ऊपर नहीं जा सकती। और ये मुस्लिम कहना, जैसे मैंने आपको बताया, ये बोलने में आसान है मगर फरमा बरदार रह के चलना, ये है असल इम्तिहान। नानू लहू मुस्लिमून कहना कौन सा मुश्किल है? लेकिन वाकई अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाला असल मुस्लिम है, चाहे आपने नाम कुछ भी रखे हो, असल मुसलमान वो ही है जो फरमा बरदार है। आप देखें, कब्र में ये कहना आसान नहीं होगा कि मेरा दीन इस्लाम है, पता है ना, अगर कब्र के जो तीन सवाल होंगे, मन रब्बू का, माँ तुम्हारा रब कौन कौन है, माँ दीनू का तुम्हारा दीन क्या है, तो ये अगर आप समझते हैं कि मैं फर फर बोल दूंगी इस्लाम, और कुछ ऐसे नादान लोग होते हैं कि वो कब्रों के बाहर खड़े होकर उनको पढ़ाइयां करा रहे होते हैं, वो अब तुमसे ये सवाल किया जाएगा ये बोल देना, वो सोचते हैं जैसे दुनिया में हम चीटिंग करा लेते थे क्लासरूम के बाहर खड़े होके, दुनिया में नहीं कोई ये अलाउ करता कि पर्ची आप दे दें या बाहर से बोल बोल के बता दें बेटा इसका आंसर ये लिख लो, तो आप सोचते हैं कि अल्लाह के हाँ इन्होंने क्या समझा हुआ है अल्लाह के हिसाब किताब को, ये काम करते हैं, अल्लाह के हाँ वहां पे चीटिंग चलेगी। तो वहां पे जब ये तीन सवाल होंगे ना कब्र के, रब के बारे में, नबी के बारे में, और दीन इस्लाम के बारे में, कि तुम्हारा दीन क्या है, उस वक्त आसान नहीं होगा ये कहना कि मैं मुस्लिम हूं, मेरा दीन इस्लाम है। पता है क्यों? इसकी ऐसे मिसाल समझे, अब हमने किताबों में पढ़ते हैं, वो ही कह सकेगा जिसका ओढ़ना बिछोना इस्लाम होगा, वो ही कह सकेगा जो बस जिसने इस्लाम को अपना दीन बनाया होगा वाकई। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक मिसाल से बताती हूँ। देखिए, जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, या चलो ये सो पूछ लें, जो लोग यानी वैसे ही चलें, आपसे आपका नाम पूछा जाए तो आपको सोचना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। मैं सोच के बताती हूँ कि मेरा नाम क्या है, नहीं, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन आपसे आपके घर का नंबर पूछा जाए तो अक्सर हमें तो नंबर याद नहीं होता हमारे घर का फोन नंबर, क्यों, आप स्पीड डायल आ गया तो हम कभी सोचते ही नहीं, तो बड़ा सोच सोच के कईयों को तो बिल्कुल ही नहीं याद रहता। अच्छा, इसी तरह देखें आप, जो लोग नमाज पढ़ते हैं बाकायदगी से, सूरह फातिहा उनसे सुनी जाए तो कभी नहीं अटकते, चाहे आप नींद में सुन लें उनसे, वो अटकेंगे नहीं। तो क्या साबित होता है, जिन चीजों के साथ हम रहते हैं, जिनको अपना शार बनाते हैं, जिनके साथ हम अपने दिन रात गुजारते हैं, वो फरफर हमारी जुबान से निकलते रहते हैं, चाहे कोई नींद में पूछे, किसी तरह भी पूछे, कभी गलती नहीं हम करते। सूरह फातिहा अच्छी खासी लंबी सूरह, अब आप उसकी आयतें, हम सात आयतें लेके, तो आपने कहीं नहीं गलती की, कहीं आपको नहीं शुबा होता कि ओ ये था या ये था, जबर थी कि जेर थी, फरफर सुना देते हैं आप, बगैर सोचे समझे भी सुना देते हैं, क्यों कैसे, इसलिए कि आप उसको रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, कितनी दफा पढ़ते हैं, सारी जिंदगी पढ़ते रहे नमाज में, है ना। लेकिन अब नंबर आपको इसलिए नहीं आ रहा, हालांकि वो 6 4 6 7 हिंसे ही हैं, नंबर ही हैं, बड़ी बड़ी आयतें तो नहीं है, इसलिए कि आप उनको अब डायल ही नहीं करते। इस्लाम के साथ भी ऐसा ही है, जो इस्लाम के मुताबिक चला वो बोल सकेगा इस्लाम है मेरा दीन, क्योंकि उस वक्त तो होश उड़े होंगे, आसान थोड़ी होगा मुनकर नकीर जो बोल रहे होंगे, आसान नहीं होगा हिसाब किताब देना उस वक्त। वो तो इतनी खौफनाक शक्लों के, मैं उनकी शक्लें ही देख के कोई इंसान रोशन भागता हो जाता। तो वो जो बगैर होश के भी कह सकता है इस्लाम, इसलिए कि सारी जिंदगी इस्लाम इस्लाम ही तो करता रहा वो, इसी कलमे के लिए ही तो खड़ा रहा वो, इसी को अपनी जिंदगी बना लिया उसने। उसके दिल में भी इस्लाम था, उसके उठने बैठने में भी इस्लाम था, वो इस्लाम पे चला, उसका तो दिल दिमाग पे छाया रहता था इस्लाम, दीन ही तो छाया रहता था। वो तो कह सकेगा कि हाँ मेरा दीन इस्लाम है। और जिसने इस्लाम को बस एक नाम है इस्लाम का, इससे आगे कुछ नहीं है, वो कैसे बोलेगा मेरा दीन इस्लाम है, जो इस्लाम से एलर्जिक होता है। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया, हालांकि वो खुद कुछ कुछ दीन पे चलने वाली तो नहीं थी, ज्यादा कुछ इस तरह से नहीं करती, यानी बहुत मॉड स्कॉट खातून थी, तो कहने लगी कि मैं पाकिस्तान गई और मुझे किसी ने कहा, ये मैंने लफ्ज नया ही सुना है, अब शायद ये नया इजाद हो गया कि जब हम निकले थे मुल्कों से अपने तो वहां पे ये लफ्ज नहीं होता था। तो कहने लगी मुझे किसी ने कहा, किसी दोस्त ने, कि तुम बड़ी फंडो हो गई हो। फंडो? मैंने कहा मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये फंडो, अच्छा फंडामेंटलिस्ट हो गई हो, कि तुम तो बहुत ही दीन के। हालांकि अभी वो कुछ कुछ कभी नमाजें पढ़ती हैं, कभी नहीं पढ़ती, कभी मतलब इसके मुताबिक ही उनका सारा वो है। तो अब भी किसी ने क्या कह दिया कि तुम तो फंडामेंटलिस्ट हो गई हो। तो सोचें जिनको ये भी बहुत लगता है, आए कि तुमने कभी कभी नमाज पढ़ ली, तुम तो फंडो हो, वो क्या दीन है इस्लाम को अपनाते होंगे, कैसे क्या अमल करते होंगे जो दूसरे को ये कह रहे हैं, छोटा सा अमल देख के, अल्लाह हू अकबर, जो इतनी एलर्जिक हूं इस दीन से, क्या वो बोल सकेंगे? और क्या इनको समझ नहीं आती कि हमें अल्लाह के आगे खड़े होना है? क्या इनको ये याद नहीं है कि हमें जाना है? क्या इनको पता नहीं है कि जमीन के नीचे हमसे हिसाब किताब होना है? अल्लाह अकबर, तो नहनु लहू मुस्लिमून। देखें रिलीजन के खाने में इस्लाम लिख देने से हम मुस्लिम नहीं हो जाते, वो तो कई लोगों की मजबूरी भी हो सकता है कि अब क्या लिखें, चलो इस्लाम ही लिख देंगे, कि हमारे बड़े तो मुस्लिम ही थे। मुस्लिम बनने से इंसान मुस्लिम होता है, और मुस्लिम बनना उसकी हमें कोशिश करनी है, ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम नाम रख दिए तो मुस्लिम, ये कोशिश करनी है कि हम मुस्लिम बन जाएं, इसके लिए दुआएं करनी है, अल्लाह मुस्लिम बना दे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। फइन आमनू बिमिथली मा आमन तुम बिही फकद इहतदौ। फिर अगर वो ईमान लाए, वो कौन? यहूदी, नसारा और जो कोई भी, दुनिया के सारे लोगों को बात है, हम सब की भी बात है, हर एक की। अगर वो ईमान लाए, बिमिथली मानिंद उसके, मा जो, आमन तुम, जो तुम ईमान लाए, तुम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, उनसे बात हो रही ना सबसे पहले, भी साथ इसके, यानी इस दीन के जिस पर जैसे तुम ईमान लाए हो, जैसे तुम इन सारी बातों के ऊपर ईमान लाए, जैसे किसको कहा जा रहा है? सहाबा को, हमें नहीं, हमारी बात नहीं हो रही है इस वक्त। जैसे तुम ईमान लाए हो, तब फका देता दो, तब है कि बिला शोबा वो हिदायत पा गए। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ए तदो किसने कहा था? 135 आयत में देखिए किसने कहा है कि तुम हिदायत कब पाओगे, जब यहूदी या नसरानी हो जाए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम गाइडेड, तुम सीधे रास्ते पर तब होगे जब तुम ऐसा ईमान लेकर आओ, सबको कहा जा रहा है, जैसे ये ईमान लेकर आए, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करो। और उन सहाबा से क्या कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे तुम लोग ईमान लेकर आना, जब तक ये ऐसा ईमान नहीं लेकर आते, ये हिदायत पे नहीं है, चाहे कितना भी कह रहे हैं यहूदी हो जाओ फिर होगे, ईसाई हो जाओ फिर होगे, और हम अपना कोई और स्लोगन बना ले, फलां हो जाओ तो फिर हिदायत पे हो गए, नहीं, जब तक ऐसा ईमान नहीं लेकर आते, तुम किसी भी फिरके से हो, कोई भी तुम्हारा नाम है, यानी जद्दी पुश्ती तौर पे तुम किसी फिरके से चले आ रहे हो, लेकिन ईमान अल्लाह को मतलूब कौन सा है? कौन सा ईमान है जो एक्सेप्टेड है अल्लाह के यहाँ, जो अल्लाह ने रोल मॉडल बना के दे दिया, जो अल्लाह ने एक रोल मॉडल कहते स्टैंडर्ड बना दिया एक, दिस इज द स्टैंडर्ड यू हैव टू अचीव, वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था और सहाबा का था। हम कहते हैं हम तो उस पर पहुंच ही नहीं सकते, लो हम तो कैसे पा सकते। ठीक है आप नहीं पहुंच सकते, उस रास्ते पे तो चले, मैंने आपको ट्रेन की मिसाल दे दी ना, इस पटरी पे तो हो जाएं, आप कितनी भी पीछे हो लेकिन ट्रैक तो वही हो, आप पीछे पीछे फुटस्टेप्स को तो फॉलो करने की कोशिश करें ना, कोशिश करनी ना उस रास्ते पे जाना, फिर कहना नहीं हम कैसे पहुंच सकते। तो अपने आप को कम अज कम उनकी जितनी नकाली हम करेंगे ना, नकल करना वैसे बुरा समझा जाता है, लेकिन इस सहाबा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी नकल कर सकते हैं करें, तभी आप हिदायत पे हैं, जितनी ज्यादा करेंगे उतनी हिदायत याफ्ता है। ठीक है, और इसके लिए अब हम उनकी जिंदगियों को जाने, और उनकी जिंदगियों को किस लिए जाने, इसलिए नहीं कि वो वाह वाह करें बस बैठ के, जैसे हमने पहले बात की, इसलिए कि हमने इस पे चलना है ना, अल्लाह ने ये स्टैंडर्ड जो बना दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने। आप अल्हम्दुलिल्लाह सीरत बाज लोगों ने कोर्स कर लिया है, बाज लोग अभी नहीं जानते, वो कोर्स लें, सीरत को पढ़ें। दूसरी नंबर टू, सहाबा कराम की सीरत को जाने, उनका वो उनकी जिंदगियां कैसी थी, क्या चीज है जो आपको उनकी जिंदगी में नजर आती। ठीक है सबकी आदतें डिफरेंट डिफरेंट थी, किसी ने किसी मैदान में बहुत आगे, मतलब कोई इल्मी मैदान में आगे बहुत चले गए, कोई जंगी मैदान में आगे बहुत चले गए, कोई सखावत में आगे बहुत चले गए, कोई और खिदमत खल्क में आगे बहुत चले गए, मतलब डिफरेंट हर एक का एप्टीट्यूड होता है ना, लेकिन क्या चीज है जो एक आपको नजर आती है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो आखरत को सामने रख के चलने वाले थे, चाहे वो किसी फील्ड में भी चल रहे थे, मतलब नेकी के बहुत सारे ट्रैक्स है ना। अब उन किसी ने देखा अबू हुरैरा इल्म के मैदान में बहुत आगे गए, खालिद बिन वलीद देखे जंगों में बहुत आगे, इतने हजरत उस्मान को देखे सखावत में कितने आगे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इसी तरह। तो हम देखते हैं ना इनके नाम सुपर हीरोज उस फील्ड के, वो फील्ड इख्तियार कोई भी आप कर लें, लेकिन कौन सी चीज है जो बेस थी उनकी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना दीन को, अपनी दुनिया की खातिर आखरत नहीं उन्होंने कभी बेची। वो आंधी आई तूफान आए, मुनाफिकीन है कभी, मुशरिकीन है मक्का है कभी, यहूद है, कितनी मुखालफतें और कितना कुछ उन्होंने सहा, मगर वो जमे रहे डटे रहे इस दीन पे, इसको नहीं छोड़ा। शकूक व शुभात के साथ वो जिंदा नहीं रहते थे कि अपने दीन में ही शकूक व शुभात है, उनके डाउट्स आ रहे हैं दिल में, बातें आ रही हैं ये क्यों ऐसी है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसी बातें नहीं करते थे वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पे मर मिटने वाले थे, वो लोग थे कि जान जाए तो जाए ईमान ना जाए, ये वो उन्होंने करके दिखाया। तो वो इसकी अमली मिसाल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है ना तो सहाबा को देख लें, हनीफ होने की, और जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड बनाया हमारे लिए। अब हम कितना हद तक कोशिश करें इसके अंदर, ये हर एक को एफर्ट करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया फका देता था तब वो हिदायत पे। वैसे तो हम जितना मर्जी कहते रहे कि हम मैं ही हिदायत पे हूं, और कितनी मुझे हिदायत चाहिए, बस मुझे हिदायत मिल गई, लेकिन स्टैंडर्ड इज दिस, इस स्टैंडर्ड पे अपने आप को रख के देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ सहाबा के ईमान के मुकाबले में, उनकी जिंदगियां कैसी थी और मेरी कैसी हैं, उनकी जिंदगी की जिसको कहेंगे प्रायोरिटीज क्या थी और मेरी क्या है। ऐसे नहीं कि वो हंसते बोलते ही नहीं थे, बस चुप रहते थे, ऐसे तो नहीं था, ऐसे नहीं था कि वो कभी कोई कोई उनकी जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं थी, रूखी फीकी बस ऐसी जिंदगी थी, या वो बस अल्लाह अल्लाह करते रहते थे बैठ के बस मस्जिद में, और तो बेचारे कुछ नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, सारे काम उनके होते थे, उन्होंने शादियां भी की, उनके बच्चे भी हुए, उन्होंने बच्चों के भी अपने सारी जिम्मेदारियां निभाई, उनकी भी हमसाइगियां भी होती थी, रिश्तेदारियां भी होती थी, सब चीज होती थी, लेकिन वो कैसे थे ये जानने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदउ। इस बात को याद रखिएगा, ये अगर तुम ऐसे ईमान लाते हो जैसे वो ईमान लेकर आए तो तब तुम हिदायत पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, जिन्होंने नहीं जानी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स ऑफर हो रहा है, आप लोग आगे बढ़ें, ये कोर्स लें और जानें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। पहले तो वहां से स्टार्ट करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम सीरे सहाबा भी पढ़ेंगे। मगर पहले जो जिन्होंने इन सहाबा की तरबियत की थी वो खुद कैसे थे, तो टॉप के जो हस्ती हैं पहले उनको जाने, मतलब तभी हिदायत याफ्ता। वह इन तवल्लव, फिर अगर वो मुंह मोड़े, आक बात को नहीं कबूल करना चाहते, नहीं इस तरह का ईमान लाना चाहते, फा इन्ना मा हम फी शिकाक, तो बेशक वो जिद में है, मुखालफत में है। और मुखालफत में तो आपको पता है, जब किसी ने नहीं करना हो तो उसके बाद उसके पास क्या एक हरबा होता है, मुखालफत करना। आप देखते हैं आज भी, अगर आप दीन के ऊपर कुछ चलना चाहें तो वो लोग जो नहीं चलना चाहते ना, वो फिर कभी मजाक करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मुखालफतें करते हैं, रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। और उनको समझाने की कोशिश करें तो नहीं, उन्होंने खुद नहीं आना इस तरफ, वो खुद जिद में है, तो मुखालफत तो आएगी फिर। मुखालफत के आगे फिर डट जाना है, और पता तो चले ना कि ईमान है अंदर। ऐसा ये कौन सा ईमान हुआ कि जो फूंकों से ही बुझ जाए? अगर जैसे वो पौधा नहीं होता, वो फूंक ही मारे तो बेचारा लेट जाता है। अगर ऐसे हमारे ईमान है तो ये क्या ईमान है? ये कैसे आंधियों तूफानों के आगे खड़े होंगे, जब आगे वक्त जाल का आएगा कैसे खड़े होंगे बताएं? ये तो यहीं पे फूंकों से ही बुझने लगे हैं, लेट लेट जाते हैं, किसी ने फूंक भी मारी तो। आप अपने ईमान को इस काबिल समझते हैं कल के चैलेंजेस का मुकाबला करें? दज्जाल का वक्त आ रहा है, उसका मुकाबला करें, अपने आप को रेडी किया हुआ है आपने इसके लिए? हम किसी भी आंधी तूफान आने लगे, कोई दुनिया में अल्लाह रहम करे कोई क्राइसिस आने लगे, तो उसके बड़े तैयारियां करके बैठ जाते हैं, जी आपको नहीं पता ऐसे होने वाला है, तूफान आने वाला है, ये होने वाला है, हम उसकी तैयारी कर। आपके नबी तो आपको बता गए कि दज्जाल आने वाला है और उसकी ये निशानियां हैं, और आप सारी निशानियां देख रहे हैं। आपने अपनी कोई तैयारी की है कि अपने ईमान को और मजबूत कर ले? ये दौरे दज्जाल है और आगे आगे और वक्त करीब आ रहा है उसके आने का। जिन्होंने कुछ भी दीन पढ़ा हो ना थोड़ा भी, उनको भी नजर आ रहा है, जिनको थोड़ी सी भी समझ है उनको पता चल रहा है कि क्या वक्त आ रहा है आगे। अब उसके बाद अपना सर जमीन में देके और यहाँ कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाने से मसले हल नहीं होंगे। अपने आप को ईमान में मजबूत करें, ये रोटी मिले ना मिले, ईमान मेरा बचना चाहिए। जॉब हो या ना हो, ईमान बचना चाहिए। सर पे छत रहे या ना रहे, मेरा ईमान बचना चाहिए। कुछ भी हो, ईमान बचना चाहिए। उस औरत की तरह जो फिरौन की बांधी थी, और देखो बच्चे देग में डाल दिए, जलते खोलते तेल में डाल दिए गए, ईमान बचा के चली गई ना वो। ईमान को बचाना, और ईमान तभी बचेगा जब ये बहुत मजबूत होगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, जब ईमान ऐसे होते हैं तो फिर तो अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दी, ऐ नबी आप फिक्र ना करें, अनकरीब काफी होगा आपको अल्लाह उनके मुकाबले में। यानी ये मुखालफतें करेंगे, अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो बेशक वो तो अपनी जिद में पड़े हुए, मुखालफत में पड़े हुए हैं, तो ये तूफान आएंगे, लेकिन फिर आपके लिए अल्लाह काफी हो जाएगा। इसीलिए सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आखिरी जमाने के लिए पूछा था ना, कि हम उस जमाने को अगर पा लें तो फिर हम क्या दुआ करें, तो आपने फरमाया हसबी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। यहाँ पे भी है फसा यकफी का अल्लाह, फिर अल्लाह काफी है, अल्लाह अनकरीब काफी हो जाएगा तुझको उनकी तरफ से। वह हुवा समीउ अल अलीम, और वो सुनने वाला है जानने वाला है। सुनने वाला क्या, जो ये साजिशें करते हैं, जो बातें कर रहे हैं, अल्लाह वो भी सुनता है, और जो दिलों में इनके बुग्ज है अल्लाह उसको भी जानता है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग कौन सा होता है? अल्लाह का रंग येलो, ब्लू, ग्रीन, शायद ग्रीन होता है मेरे ख्याल, हम तो सारे ग्रीन ही समझते हैं, या फिर काला, शायद वो समझते हैं। अल्लाह का रंग कौन सा होता है, कभी आपने सोचा? अल्लाह का रंग क्या है जिसको कुरान पाक में अल्लाह का रंग कहा गया? अल्लाह का रंग उसके दीन का रंग है, उसको कहा गया ये अल्लाह का रंग है। यानी देखें आप, ये अभी भी करते हैं ईसाई, उस जमाने में भी करते थे कि ये अपने बच्चों को 7वें दिन ले जाके अपने चर्च वगैरह में या इसमें येलो कलर उसके ऊपर डालते थे, कहते थे अब ये ईसाई हो गया। यहाँ पे बताया गया कि नहीं, सबसे खूबसूरत रंग अल्लाह का रंग है, यानी उसके दीन का रंग, सिबगत अल्लाह। और मैंने बताया आपको जो उनको उनका रद्द कर दिया गया, जो अपने बच्चों को उसमें नहला के और वो रंग देते ना बैप्टाइज करना, आज भी कहते हैं वो रंग नहीं, अल्लाह का रंग। और ये रंग मैंने आपको बताया, सिबगा उस रंग को कहते हैं जो चढ़ाया जाता है, जो माँ के पेट से चढ़ा हुआ नहीं आता, आपको चढ़ाना पड़ता है अपने ऊपर, ये दीन का रंग, ये है अल्लाह का रंग। यानी कोई आपको देखे तो उसको नजर आ जाए कि इसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है। कैसे नजर आएगा? आपने किसी कलर के कपड़े नहीं पहनने, उसको आपको देख के अल्लाह याद आ जाए। हम कहते हैं ना जाहिर से कुछ नहीं होता, पता नहीं तुम्हें नहीं पता मेरा दिल कितना अच्छा है, तो दिल होगा अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो सिबगत अल्लाह की बात आ रही है, दिलों को रंगने की तो नहीं बात आ रही। सिबगत अल्लाह तो बाहिर है, बाहिर आप क्या है, आपकी बोल चाल, आपका उठना बैठना, आपकी जो भी सोच विचार है वो भी आपकी जुबान से पता चलती है, आपके तौर तरीके, आपका लिबास, आपकी ये सब चीज बताती है कि आपके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ। और ये बताएं, हमारे हम दुपट्टों पे अपने कभी रंग कराते हैं, वो सिबगा ही होता है, ओरिजिनल तो नहीं होता, वाइट होता है दुपट्टा, तो हम जाके रंग कराते हैं। अब वो रंगने वाला अगर कोई अनाड़ी हो तो कभी कहीं से ज्यादा कर दिया, कहीं से हल्का कर दिया, कहीं से कुछ हो गया, कहीं से बहुत ही डार्क एक तरफ को हो गया, एक तरफ को बिल्कुल लाइट, तो कितना बुरा लगता है, धब्बे धब्बे लगते हैं ना, वो तो पहनने के काबिल नहीं रहता। रंग वो तो है प्यारा जो एक जैसा सारा चढ़ा। आप ये देख लेंगे हमारी जिंदगियों में कहीं पे तो अल्लाह का रंग हो, कहीं पे कहीं औरों का रंग हो, कहीं पे कहीं तीसरों का रंग हो, सारे रंग हमने अपना अपने ऊपर चढ़ा लिए, तो हम क्या बने में फिर, क्या बन के बैठे में। थोड़ा थोड़ा अल्लाह का भी चढ़ा लो, लेकिन बाकियों का भी चढ़ा लो। कहीं से हम कुछ नजर आए, कहीं से कुछ नजर आए, तो ये तो गिरगिट होता है जो रंग बदलता रहता। तो वो तो नहीं बनना हमने, हमने अल्लाह वाले बनना है। ये हमारे पर सारा का सारा रंग अल्लाह का ही हो। अल्लाह ताला ने बताया वा मन आसनु मिन अल्लाह ही सिबगा, अल्लाह के रंग से ज्यादा अच्छा रंग किसका है। लेकिन आज की अफसोस है कि सोच ये है कि इनका रंग बहुत अच्छा है, जो वेस्ट में लोग रहते हैं इनका रंग, गोरे का रंग बहुत अच्छा है, वो जो तौर तरीके करते हैं ना, वो रंग हमें अच्छा लगता है। वो तो क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं तो कितना मजा आता है ना, सेंटा भी आता है, कभी वो वैलेंटाइन करते हैं, कभी न्यू ईयर, कितनी रंग बिरंगी जिंदगी उनकी। तो मुझे तो वो रंग बड़ा अच्छा लगता है, अपना रंग नहीं अच्छा लगता। ये क्या ईदें इतनी बोर है, एक मिसाल दे रही हूँ, सिर्फ एक एस्पेक्ट आपको दिखा रही हूँ, पूरी जिंदगी पे इसको ले लें, ये कहाँ कहाँ दूसरों के रंग अच्छे लगते हैं। शादियां करनी तो वो तो हिंदुओं की बड़ी खूबसूरत होती है, देखा है किस तरह से करते हैं, वो बड़ा उसमें मजा बहुत आता है। तो उनका रंग शादियों में चढ़ा लिया, बाकी रस्मों रिवाज में और रंग चढ़ा लिए, तो हम तो सबके रंग चढ़ा के बैठ गए। हमें कभी किसी का रंग अच्छा लगता है, कभी किसी का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह से ज्यादा अच्छा किसका रंग है, ये वाकई हमें यकीन है? कुरान पाक कहता है कि अल्लाह से ज्यादा अच्छा रंग किसका। मेरे तो दिल के अंदर बहुत सारे रंग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं वो ही अपने ऊपर चढ़ाना चाहती हूँ। मुझे तो उन उन चीजों में अल्लाह का रंग नहीं पसंद आता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह के दीन का रंग, वो अल्लाह का रंग है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता वो। मगर कुरान पाक ने डिक्लेयर कर दिया कि अल्लाह का रंग बेहतरीन है। हम अपने स्टैंडर्ड देखें, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स देखें, और कुरान क्या बता रहा है वो देखें। हम कहते हैं ना, हमें कैसे पता चले हम अल्लाह की नजर में कैसे हैं, लेकिन अपने आप को कुरान के आगे रख के देखिए, आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि हम क्या हैसियत रखते होंगे अल्लाह के आगे, हमारी कितनी लाइक्स वो हैं जो अल्लाह की लाइक्स हैं और कितनी डिसलाइक्स वो हैं जो अल्लाह की डिसलाइक्स हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह का रंग सबसे खूबसूरत रंग है, सबसे अच्छा रंग है, मगर कहाँ कहाँ जिंदगियों जिंदगी में वो मौके आते हैं जहां पे अल्लाह का रंग मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होता, जहां पे मैं औरों के रंग अपने ऊपर चढ़ाई बैठी हुई हूं और वो ही मुझे पसंद है। और याद रखें, रंग चढ़ता, अगर चढ़ाना चाहते हैं ना अल्लाह का रंग, तो दूसरे रंग निकालने होंगे। आप कभी एक रंगे हुए दुपट्टे को तो नहीं देती पहले से ही उसके ऊपर नीला रंग हो और आप कहती हैं इसको पीला कर दे, ऐसे तो नहीं देती ना। पहले वो उसको ब्लीच करेंगे, पहले साफ करेंगे, या आप चलो दुपट्टे को छोड़े, आप अपने दीवारों पे रंग करना चाहती हैं, पेंट करना चाहती हैं, क्या करते हैं? पहले पिछले रंग को निकालते हैं, फिर अगला रंग आता है उसके ऊपर। ये नहीं कि आपकी दीवारों पे नीला रंग है तो आप उसके ऊपर कुछ और करना चाहें तो उसी, नहीं, उसके ऊपर पहले उसको साफ करते हैं, पहले उसको न्यूट्रल करते हैं, तब और रंग चढ़ सकता है। तो हमें भी रंग उतारने होंगे दूसरों के, तब अल्लाह का रंग चढ़ेगा, इसी के ऊपर नहीं कर सकते। और सिबगत अल्लाह में है, जैसे किसी के ऊपर उंडेल देना, सारा पूरे के पूरे नहा गए अल्लाह के रंग में, ऐसा पेंट में ना किसी पेंट की बाल्टी पूरी किसी के ऊपर डाल दें, ऐसा रंग चाहिए अल्लाह को, ऐसा उसका रंग चढ़ा होना चाहिए कि कोई देखे ही तो पता चल जाए कि ये मुसलमान है। आपसे मामला करे, आपसे डीलिंग करे, आपसे बिजनेस करे, आपसे कोई ताल्लुकात जोड़े, शादी ब्याह के कोई काम काम आपके साथ मामलात करे, या किसी किस्म के भी मामलात आपके साथ हो, हमसाईगी में आपके रहे, उसको पता चले ये मुसलमान है, तो पता तब चलाएगा ना जब हमारे ऊपर इस्लाम का रंग होगा, हमारी हर चीज में भी फिर आ जाएगा, हमारे सौदा खरीदने से लेके ड्राइविंग से लेके जहां पे भी हम जाएं, किसी से बातचीत करें, किसी अस्पताल में, किसी दफ्तर में, किसी जगह पे, पता चलना चाहिए इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ है भाई इस पे। रंग बाहर होता है, अंदर नहीं। तो ये वकालते ना करें, तुम कौन, क्यों इतनी जजमेंटल हो रही है, तुम्हें क्या पता मेरा दिल कितना ज्यादा मुसलमान है, बाहर से नहीं नजर आती तो कोई बात नहीं ना भाई, बातचीत में ना, मामले में ना, खाने पीने में, हराम खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ फिक्र नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे दिल तो बहुत अच्छे हैं, दिलों पे हमारे रंग चढ़े हैं। तो ये है जिंदगी गुजारने में ये रंग नजर आता है। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी के लिए इबादत करने वाले हैं, हम उसी के गुलाम हैं, उसी की इताअत गुजार हैं। और मैंने आपको इबादत बताया था ना, यानी इंतहाई मोहब्बत के साथ, खुशू तदल्लुल, यानी झुक जाना, बिछ जाना, अपने आप को जलील कर देना, इंतहाई मोहब्बत के साथ, शदीद मोहब्बत जिसे की जाती है, वो इताअत जो मोहब्बत के तहत की जाए, क्योंकि इताअत तो वो भी होती है ना जो मजबूरी के तहत की जाती है, कोई किसी ने बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है तो आप उसकी इताअत करते हैं, लेकिन एक इताअत का जज्बा वो होता है जो मोहब्बत से किया जाए, वही है इबादत। इतनी मोहब्बत के साथ फिर अल्लाह का रंग चढ़ाते हैं या नहीं, तभी कह सकते हैं ना, नहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, क्या कह दीजिए, क्या तुम हमसे लड़ते हो अल्लाह के बारे में, वह हुआ रब्बू ना, और रब्बू को, वो तो तुम्हारा भी रब है, तुम भी तो उसी को मानते हो, आखिर तो ईसाई भी और यहूदी भी मानते तो है ना अल्लाह को, वो तो तुम्हारा भी रब है, तुम हमसे उस बारे में क्यों झगड़ते हो। एक अल्लाह की तौहीद की तरफ ही बुलाते थे ना, तो इस बारे में क्या झगड़ा। अब देख लें, इसी तरह हम भी, हमें भी ये सोचना चाहिए कि एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, एक काबा, सब एक है, फिर भी आपस में झगड़े, इसी किस्म के झगड़े ये करते थे यहूदी ईसाई। वाला ना मालूना वाला कुमा मालूकुम, तो ठीक है, हमारे लिए हमारे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, अगर तुम इसी रास्ते पे चलना चाहते हो तो मुसलमान का काम क्या है, सिर्फ बता देना, जबरदस्ती तो किसी को नहीं ला सकते ना, उसके अमल बदल तो नहीं सकते, फिर ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हमारे लिए हमारे। वनाहनु लहू मुखलिसून, और हम उसी के लिए खालिस, है, मुखलिस जो होता है ना, एक मुखलस होता है और एक मुखलिस होता है। मुखलिस जो होता है जिसको अल्लाह, मुखलस जो होता है जिसको अल्लाह अपने लिए चुन ले, और मुखलिस वो होता है जो अल्लाह को चुन ले अपने लिए, जो खुद चुन ले अल्लाह को। तो मुखलस कौन है? जैसे अंबिया को अल्लाह ने चुना, तो वो मुखलस हैं, और मुखलिस हम हैं, वो चुन लिए गए, हमने चुना अल्लाह ताला को अपने लिए। किस तरह? खालिस करके अपने आप को हमने। मुखलिस कौन होता है? जो प्योर हो, इसके अंदर कोई भी, यानी जिसको कहते हैं ना खोट, खोट नहीं हो। और खोट की चीज क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे नेक अमल में खोट क्या है? रियाकारी, तकब्बुर, ये खोट है। अल्लाह ताला को खालिस अमल है जो सिर्फ कबूल है, खोट वाला नहीं कबूल। इसीलिए इखलास की बहुत अहमियत है, जो हमने अभी बात भी की थी ना, कि वो भी क्यों डरते थे कि रब्बाना तकब्बल मिन्ना, कि हमारा अमल अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ खालिस अमल को कबूल करता है, खोट वाले को नहीं करता। तो इसलिए हमारे असलाफ ये कहते थे कि अपने अमल को मखलूक से छुपाओ ताकि ये खालिस रहे, इसलिए कहते थे। जुनेद बगदादी ने कहा कि इखलास जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, उसको फरिश्ते भी नहीं जानते कि वो उसको लिख सके। इखलास का किसी को नहीं पता, तो ये सिर्फ अल्लाह को पता होता है कि इंसान का अमल कितना खालिस है। इसी तरह एक जगह पे आता है कि इखलास ये है कि बंदा अपनी नेकियों को इस तरह छुपाए जैसे अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकी को छुपाए, यानी तभी नेकी भी खालिस रह सकती है ना, कि किसी को पता ही ना चले, वरना तो ये खोट आ जाता है। फिर इसी तरह एक और जगह है कि इखलास ये है कि अपने अमल को हकीर जाने, ये नहीं है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मैंने तो ऐसे कर दिए, बहुत लोग अपनी नेकियों के खुद ही बताते रहते हैं, मैं तो ये कर, मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने तो ये नहीं, छुपाओ उसको और अपने अमल को हकीर जानो, आपको क्या पता है कि ये कबूल है कि नहीं। इसी तरह रियाकार की तीन अलामतें बताई गई ताकि इंसान अपने आप को भी देख सके कि मेरे मेरी रियाकारी तो नहीं हो रही। रियाकार की क्या अलामत है? जब वो अकेला होता है तो इबादत से थक जाता है, लोगों में होता है तो फिर बड़ा तरोताजा रहता है, जब इसकी तारीफ की जाए तो ज्यादा बड़ा एफिशिएंट हो जाता है, तारीफ ना की जाए तो बैठ जाता है। और इखलास रिया के मुकाबले में है, यानी इखलास रियाकारी के ऑपोजिट है। तो ये बात कि अपने अंदर इखलास पैदा करना, ये एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि नेकी करना फिर भी आसान है, इखलास अपने अंदर पैदा करना ना ये मुश्किल है। कि अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो और किसी के दिखावे, किसी की तारीफ, किसी के अंदर खुद नुमाई, अपनी बड़ाई, अपनी नेकी को दिखाने के लिए ये ना हो। अम तकुलूना इन्ना इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अस्बाता कानू हुदन औ नसारा, क्या या वो कहते हैं कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इस्बात ये सारे जो थे वो यहूदी थे, यहूदी ये कहते हैं औ नसारा या ईसाई कहते हैं ईसाई थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, आप कह दीजिए ए नबी, आप इनको जवाब दें, अ अंतुम आलमु अमिल्ला, ये बताओ तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह को ज्यादा पता है? तुमने तो सारों को ही या तो यहूदी बना दिया या नसरानी, तो तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह को ज्यादा पता है? वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो छुपाए गवाही को जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। यानी अल्लाह ताला की गवाही क्या है जो इनके पास है? इनकी किताबों में था, इनको पता है इस बात का, ये पढ़ते हैं, इनको यह हकीकत पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, इनको पता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम क्या थे, इनको ये पता है। इनको ये भी पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आखिरी नबी है, ये भी पता है। ये सारी गवाहियां इन्होंने छुपाई हुई है, और इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो ये गवाहियां छुपाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं अल्लाह ताला गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हें ये सारी बातें पता है, फिर भी मानना ही नहीं है, और यही कहते जाना नहीं वो तो यही थे, यहूदी थे, या वो कहते हैं नसरानी थे। दिल का उम्मत उनका दखलत, जैसे कहा गया ना, जैसे कहा जाए ये होते हैं मर्द, जैसे कहा जाए ना मर्द तो सारे ही हैं, लेकिन अब किसी का कहा जाए ये होते हैं मर्द, तो उम्मतें तो बहुत है, ये है उम्मत कद खलत जो गुजर चुकी है, यानी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, ईसा, याकूब, ये है उम्मत, यानी ये वाकई उम्मत कहनाने के लायक है। लहा मा कसबत, लेकिन जो उन्होंने कमाई की वो उनके साथ है। वाला को मा कसब, तुम उनके ऊपर फखर करते जा रहे हो, वो यहूदी थे, वो लड़ रहे हैं कि वो नसरानी थे, तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा? वो जो ने जो किया वो उनके अपने लिए था, तुम्हारे लिए जो तुम करते हो। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, तुमसे ये नहीं सवाल किया जाएगा वो क्या करते थे। इकबाल ने कहा ना, थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? बात तो ये कि तुम खुद क्या चीज हो। तो असल चीज है कि ये आयत इंसान को अमल पे उभारती है, कि खुद तुम्हें अमल करना है अपने लिए। उनकी जो तुम्हारे लेजेंड्स थे उनके किस्से क्या क्या के, तुम ये ना समझो कि तुम वो हो गए या तुम उनमें शामिल हो गए या तुम उनकी वजह से ही बख्शे जाओगे, या तो क्योंकि हम उनकी औलाद हैं या वो भी हमारे ही हिस्से थे तो इसलिए, अगर वो भी हम कहें कि वो नहनु लहु मुस्लिमून कहते थे, वो भी मुस्लिम थे, तो बस ठीक है, फिर इसका मतलब है कि हम भी उनके पीछे जो भी काम करेंगे हम उनके पीछे चले जाएंगे जन्नत में। ऐसा नहीं है, तुम्हें फिर वैसे बन के दिखाना है, उनकी जिंदगियों को देखो और उसको फॉलो करो, तब तुम्हें फायदा है। जी आपने पूछा है कि तीसरी अलामत क्या थी, यही थी ना, पहली अलामत ये रियाकारी की कि जब अकेले हो तो इबादत से थक जाए, अब लोगों के दरमियान हो तो फिर तरोताजा हो, और तीसरी जब तारीफ की जाए तो नेक अमल ज्यादा करते। अल्लाह ताला हमें इन बड़ी हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये हमारे जो रोल मॉडल्स हैं इनकी वाकई तरीके, इनकी जिंदगियां, इनको अपनाने की हमें तौफीक अता फरमाए, इनसे हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि असल रोल मॉडल बनाने के काबिल कौन है, और ये जो दुनिया के जिनको सेलिब्रिटीज और स्टार्स कहा जाता है, ये स्टार्स नहीं है, असल स्टार्स ये हैं। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। تلاوت سنیا
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون